नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर से कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में तेज गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण म्यून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने आज राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल आदान प्रदान और दोनों देशों के लोगों के संबंधों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्षों सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति के प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयासों में संलग्न रहने पर सहमति व्यक्त की। यह साझेदारी लगातार महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज कर रही है और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद लचीलापन दिखा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इस रुख को दोहराया है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद ब्रिक्स से संबंधित बैठकों में ईरान की नियमित और उच्च स्तरीय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियन को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज शाम ब्रिक्स बिजनेस फोरम के नेताओं के सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश आज दुनिया की 50% आबादी, करीब 40% वैश्विक GDP और 25% से अधिक वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में जहां वैश्विक GDP तेजी से बढ़ रही है, वहीं विकास भी हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। श्री मोदी ने कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि विनिर्माण प्रौद्योगिकी और मूल्य सृजन में विकासशील देशों को नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने एकतरफा प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुझाव दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक सदस्य देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का विस्तार करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को 4-1 से पराजित किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबकीना ने महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में एलेना ने चौथी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को 3-6, 6-4, 6-4 से हराया। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना का सामना मौजूदा चैंपियन और अरियाना सबलंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की सबलंका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला रूस के कारेन खाचानोव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में 2 अमरीकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर से कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण द्वीप पर कब्जा किया। इसके साथ ही इस विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।